सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
नमस्कार, स्वागत है आपका आज के अंक में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अक्षय ऊर्जा क्षमता में विगत वित्तीय वर्ष में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। महत्वाकांक्षी सरकारी नीतियों से लेकर अभूतपूर्व नवाचारों तक भारत तेज गति से स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और भविष्य के लिए इस बढ़त का क्या अर्थ है, ये समझने में हमारी मदद करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है इस क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के पूर्व महानिदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी जी को। अरुण जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार, धन्यवाद।
सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि ये जो हमारी उपलब्धि है उसका आकार कितना बड़ा है और वैश्विक अगुवा के रूप में जो हमें देखा जा रहा है तो किस प्रकार हमने ये महत्वपूर्ण छलांग लगाई है।
जी, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आकार की आपने बात की है
जी,
तो 228 गीगावाट का टोटल इंस्टॉलेशन हमारे देश में इस समय अक्षय रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो चुका है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें सोलर पावर, विंड पावर, बायो एनर्जी, हाइड्रो पावर, इस तरह के सभी अक्षय ऊर्जा स्रोत के द्वारा हुआ है
जी।
और ये छलांग मैं केवल यही कहूंगा कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने इसके सहभागी लोग हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये नीतियां तैयार की जाती हैं। एक एग्जांपल हम ले लें जैसे कि सौर ऊर्जा का, क्योंकि मुख्यतः इसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और हमारी हाइड्रो पावर, ये तीन इसे मुख्यतः है जिनका बहुत अच्छा योगदान है, बाकी का छोटा छोटा योगदान है। तो सौर ऊर्जा के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 2010 से पहले हमारे यहाँ केवल ऑफ ग्रिड सिस्टम ही लगाए जाते थे और जो सबसे बड़ा पावर प्लांट होता था वो 100 किलोवाट के आसपास था। थोड़े दिनों में 1 मेगावाट का प्लांट लगा, लेकिन जो इतने बड़े पावर प्लांट लगने शुरू हुए वो एक नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया 11 जनवरी 2010 को। इसके बाद सौर ऊर्जा को ये माना गया कि हम इसको ग्रिड स्केल की पावर इससे डेवलप करते हैं ताकि पूरे देश का जो एक यूनिफाइड ग्रिड है, बहुत यूनिक ग्रिड है इंडिया में, उसमें हम इसको प्रवाहित करें। और ये सपना धीरे धीरे साकार हुआ। उन दिनों जब हमने स्टार्ट किया था तो सोलर पावर लगभग 17.91 रुपए पर यूनिट था। अब आप सोचिए कि 17.91 रुपए यूनिट बहुत महंगा था जो उस समय के और अन्य स्रोतों से जो बिजली बनती थी, लेकिन कुछ राज्य आगे आए और उन्होंने कुछ इसको राज्य की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी गई ताकि ये एस्टेब्लिश करना था कि सौर ऊर्जा के लार्ज स्केल पावर प्लांट मेगावाट स्केल में, गीगावाट स्केल में लग सकते हैं। और इस तरह जब हमने अपनी यात्रा शुरू की तो आज हम सभी देख रहे हैं, फिर इसको बंडलिंग की गई हमारे जो कन्वेंशनल पावर होते हैं कि दोनों को अगर हम लोग मिक्स करके सेल करें तो सौर ऊर्जा की जो महंगी पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहाँ तक कि लगभग हर, जैसे कि 100 यूनिट में हमने कहा 10 यूनिट सोलर पावर की और 90 यूनिट कन्वेंशनल पावर की, इस तरह कुछ बंडलिंग स्कीम लाई गई
जी।
इसके बाद हम लोगों की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लाई गई, क्योंकि अभी आपने देखा कि 2010-11-12 में हमारे पावर का कॉस्ट ज्यादा थी, 2012 में ये आ गई थी 12 रुपए और 14 रुपए के रेट में
जी।
उस समय वायबिलिटी गैप फंडिंग की स्कीम लाई गई जिसमें कि हम ये रिवर्स बिडिंग करते थे और लोगों से ये कहते थे कि आपको 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए, जो कि उस 5 रुपए 5.5 रुपए जो उन दिनों अन्य स्रोतों से पावर जनरेट होती थी उस तक कॉस्ट लाने के लिए आपको कितना भारत सरकार से सहायता चाहिए, और जो सबसे कम सहायता मांगता था उसको चयनित करके और उनको कार्य दिया जाता था। तो इस तरह एक नया इनोवेशन शुरू हुआ। उसके बाद फिर उन्हीं दिनों एक दूसरा मैकेनिज्म भी लाया गया जिसको जीबीआई कहा गया, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव्स।
जी
कि आप जितनी बिजली बनाएंगे और जो गैप है जो 5 रुपए और 12 रुपए के बीच में, वो भारत सरकार देगी। तो इस तरह इसको स्टेब्लिश किया गया, कमर्शियलाइज करने की कोशिश की गई। शुरू में चूंकि ये महंगा था तो सरकार की सब्सिडी इसमें काफी जाती थी, और आज हम इस स्थिति में हैं कि इसमें भारत सरकार कोई सब्सिडी नहीं देती है और पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं। फिर इसके साथ ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो सोलर सेल हमारे 12% एफिशिएंसी के होते थे आज से 20-22 साल पहले,
जी
वो आज 25-26% की एफिशिएंसी के हैं। तो आप एक तरफ तो देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी, इतनी उस पर रिसर्च हुए, वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुए, उसके बाद दूसरी तरफ जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग काफी तेजी से बढ़ी ताकि इसके पैसे कम हुए, दाम कम हुए, और सोलर टैरिफ जो 12-13 रुपए था आज 2.5 रुपए तक आ गया है।
जी
और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सबसे सस्ती बिजली है इस समय, जितने भी स्रोतों से बिजली बनती है तो उनसे सबसे सस्ती बिजली है।
श्रोताओं, ये बहुत महत्वपूर्ण कह लें जानकारी आपको मिल रही है कि बिजली के जितने स्रोत हैं उसमें हमारे विशेषज्ञ अरुण त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि सबसे सस्ती बिजली यही हुआ कर रही है, यानी सौर ऊर्जा। हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि वर्ष 2024-25 वित्त वर्ष के दौरान 29.52 गीगावाट की अतिरिक्त वृद्धि हुई है और अब हम 220.10 गीगावाट तक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने लगे हैं। यानी बड़ी छलांग वास्तविक रूप में अपने देश ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में लगाया है। यहां पर हम ये समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये तो सौर ऊर्जा की कहानी आपने बताई, लेकिन यदि हम अक्षय ऊर्जा के जो अन्य स्रोत हैं, सौर के अलावा पवन, जल विद्युत या जैव ऊर्जा, इन सबों की यदि हम चर्चा करें तो इनमें क्या तुलनात्मक रूप से वृद्धि आप आंक रहे हैं?
इनमें भी तुलनात्मक रूप से लगभग 3 से 4 गीगावाट की वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है। जो पवन ऊर्जा है इसमें हम पूरी तरह से सक्षम है अपने देश में सभी निर्माण करने के लिए, चाहे टरबाइन हो, चाहे इसके नेसल्स हो, ये पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स हैं, टावर है, सब कुछ हमारे देश में बनता है। और केवल अपने ही यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि बाहर भी बहुत तेजी से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें विंड में एक्चुअली एक पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए थे जो कि लाने जरूरी भी थे, जिसके कारण थोड़ा सा विंड जो बहुत तेजी से सेक्टर आगे बढ़ रहा था। पहले क्या है, बिडिंग के रूप में नहीं होता था, पहले एक हमारा टैरिफ होता था वो डिसाइड कर दिया जाता था और उसके बेस पे लोग पावर प्लांट लगाते थे। फिर ये कालांतर में सोचा गया कि ये एक ट्रांसपेरेंट मेथड हमें रखना चाहिए और बिडिंग के बेसिस पे ही अब पावर प्लांट लगाए जाते हैं। तो और दूसरे जो पवन ऊर्जा है उसको लगाने का थोड़ा सा की लंबी प्रक्रिया है कि पहले उसकी पूरी माप की जाती है उस साइट पे कि कितनी विंड अवेलेबल है, और विंड फ्लक्चुएटिंग भी बहुत है। सौर ऊर्जा तो लगभग हमें बहुत कुछ पता रहता है पिछले डेटा को देखते हुए, बट पवन ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस ज्यादा है, अनसर्टेनिटी थोड़ी रहती है। अपने अपने देखिए दोनों के ही फायदे हैं। और एक और अच्छी चीज जो हुई है कि सौर और पवन ऊर्जा को दोनों को हम मिला के हाइब्रिड प्लांट भी लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब सौर ऊर्जा ज्यादा है तो पवन ऊर्जा कम है, और रात को पवन ऊर्जा भी हमें इसमें हेल्प करती है क्योंकि अपेक्षाकृत रात को अच्छी हवाएं चलती हैं, और स्पेशली जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे तो अपेक्षाकृत अच्छी हवाएं चलती हैं। तो इस तरह दोनों को ये मानकर ये मिलाया गया कि अगर एक ही जगह पे हम दोनों पावर प्लांट्स लगाएं और एक सब स्टेशन में दोनों के पावर को हम जोड़ें और फिर आगे बढ़ाएं, तो हमें जो थोड़ा सा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है ना, जैसे
जी
कि
जी
24 घंटे में अगर हम 5, 5.5, 6 घंटे सोलर ले रहे हैं और अतिरिक्त अगर हम 3 से 4 घंटे पवन भी ले सकें, तो हमारा एक टोटल यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। इस तरह ये नया ये भी टेक्निक लगाई गई है और लोग लगा भी रहे हैं ऐसे पावर प्लांट्स, तो हमें अधिक समय के लिए अक्षय ऊर्जा सप्लाई करने का
जी
मौका मिल रहा है।
यहाँ यदि ये हम सरकार की नीतियों को समझना चाहें तो कौन सी प्रमुख नीतियां रही हैं या पहल रही है जिन्होंने अक्षय ऊर्जा की दिशा में उद्योगपतियों को भी, बड़े संस्थानों को भी और आम लोगों को भी, यहाँ तक कि कह लें कि कई स्थानों पर ये देखने में आ रहा है कि RWA सब आपस में मिलकर सौर ऊर्जा के पैनल्स लगा रहे हैं और उनसे, तो सरकार की कौन सी ऐसी नीतियां या पहल रही हैं और उनसे किस रूप में आम लोग इसका लाभ ले सकते हैं सहकारी रूप में?
जी, अभी तक हमने जो चर्चा की थी वो बड़े पावर प्लांट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और ये जो हमारी पब्लिक से जुड़ी हुई जो हम प्रचारित करते हैं कि लोग अपने छतों पे सौर प्लांट लगाएं,
जी
सोसाइटीज में लगाएं, तो इसमें प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये फरवरी 2024 में इसको लॉन्च किया गया। देखिए पहले से योजना चल रही थी लेकिन इसकी गति इतनी तेजी से नहीं थी। ये सोलर ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम हमारा चल रहा था जो जिसका फेज 1 फेज 2 पूरा हो चुका था। इसमें एक तो जो मैं गति ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरा इसके लाभ को हर लोगों तक पहुंचाने के लिए
जी
एक एक ऐसी योजना बनाई जिसमें कि लगभग 60% तक छूट की प्रावधान किया गया। मतलब कि अगर आप 3 किलोवाट तक के प्लांट को लगाने के लिए आपको 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी दी गई।
जी
तो ये बहुत बड़ा इम्पेटस हुआ इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, और ये लक्ष्य रखा गया कि 1 करोड़ घरों में ये हमें पावर प्लांट लगाने हैं, सौर ऊर्जा के पावर प्लांट लगाने हैं। और इसके लिए पावर प्लांट लगाने के लिए 1 तो 60% आपको छूट दी गई, दूसरे कुछ छूट राज्य सरकारों ने भी, कई राज्य सरकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से इसमें छूट घोषित की है, किसी ने 15% दी, किसी ने 30% दी। तो 60% सरकार की है और 30%, 15 से 30% राज्यों की है। तो इतनी बढ़ गई, और फिर जो लोगों को लगाना था उसके लिए काफी कम गैप रह गया। जो गैप है उसके लिए फिर 7% से लोन देने की व्यवस्था की गई। तो आप देखेंगे कि ये पूरी व्यवस्था की गई कि एक आम नागरिक इसको तुरंत अगर लगवाना चाहता है तो तुरंत उसके जेब से कोई पैसे ना लगे, और जितने उसके बिल की, बिजली के बिल में कटौती होती है, ऐसे कैलकुलेशंस किए गए हैं कि जितनी बिजली के बिल में कटौती होती है, कटौती मतलब कि बिजली का बिल कम जितना आता है उतने ही से ही उसका लोन का जो अमाउंट है वो वगैरह भरा जा सकता है। तो 3 से 3.5 साल में इसकी कॉस्ट निकल आती है, और फिर अगले 20-22 साल तक आपको फ्री बिजली मिलती है। ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया, और इस समय एक और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए बहुत सख्त और ऑनलाइन सिस्टम अपनाया गया,
जी
जिसमें ये था कि ह्यूमन टच जितना कम से कम हो पॉसिबल, लोग अपने घर बैठे, एक पोर्टल बनाया गया जो कि नेशनल पोर्टल के नाम से जाना जाता है। अगर आपको अपने घर में एक सोलर का रूफटॉप प्लांट लगवाना है तो आप उस पोर्टल पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, और केवल बिजली के बिल में जो आपका सीए नंबर होता है, कंज्यूमर का जो नंबर होता है, अकाउंट नंबर,
जी
उससे फिर आपके सारे डेटा इस पोर्टल में फेच कर लिए जाते हैं, और बहुत थोड़ी सी जानकारी आपको भरनी पड़ती है, जैसे कि बैंक अकाउंट है, क्योंकि सब्सिडी डायरेक्ट आजकल दी जाती है जो भी लाभार्थी होते हैं उनके बैंक अकाउंट। तो इस तरह इसको यूजर फ्रेंडली बनाया गया, और जैसे ही आप अपना नाम रजिस्टर करते हैं तो उस राज्य के या उस जगह कंपनी जो लगाती है इन प्लांट्स को, वो आपको अप्रोच करती है, और ये कंपनियां जो बिजली की कंपनियां हैं, डिस्कॉम जिनको कहते हैं हम, उनके द्वारा ये इम्पैनल की गई हैं, उनके द्वारा सूचित की गई हैं। तो इनकी एक प्रक्रिया के तहत इनको इम्पैनल किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो एक तरह से पूरा एक सुरक्षा प्रदान की जाती है कि हाँ, जो कंपनी लगा रही है वो सक्षम है, वो टेक्निकली भी सक्षम है, फाइनेंशियली भी सक्षम है। ये कंपनी जो यूजर है जिसने अपना प्रस्ताव डाला है उसको अप्रोच करती है, फिर ये लोग आपस में बात करके और प्लांट को लगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये जो कंपनियां होती हैं जिनको वेंडर्स हम बोलते हैं, और ये लोग लोगों को सहायता करती हैं, उनको अप्लाई कराने में भी मदद करती हैं, उनको बैंक लोन दिलाने में मदद करती हैं, उनके यहाँ प्लांट लगवाने में मदद करती हैं। फिर जो बिजली की डिस्कॉम्स कंपनियां हैं वो इंस्पेक्शन करती हैं, और कंप्लीट को लगने के बाद सब कुछ अपलोड कर देती हैं ऑनलाइन, तब उनको लगभग 15 दिन के अंदर सब्सिडी रिलीज हो जाती है उनके बैंक अकाउंट। तो इस प्रक्रिया मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से इसने विस्तार किया, और जो पहले 5 या 6 गीगावाट का हमारा इंस्टॉलेशन था वो लगभग 10 गीगावाट से भी ज्यादा हो गया, मतलब 10 गीगावाट इसी साल के अंदर लगाया गया। और हमारा लक्ष्य है कि हम इसको और तेजी से बढ़ाते हुए 2027 तक हम पूरा 1 करोड़ प्लांट नंबर्स लगा लेंगे, जो कि अगर 3 किलोवाट प्रति घर का एवरेज लिया जाए तो 30 गीगावाट के आसपास आता है।
थोड़ी सी और नीतियों को समझना चाहेंगे कि बड़े जो पावर प्लांट हैं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में या अन्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, वहां सरकार की क्या योजनाएं हैं और क्या लाभ मिला है कहले उद्यमियों को, जिससे हमने बढ़त हासिल की है।
इसमें मैं बताना चाहूंगा कि 4 तो नेशनल लेवल की हमारी नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। कुछ कंपनियां हैं जो बहुत बड़े बड़े पावर प्रोड्यूसर्स थे पावर प्लांट के, वो आगे आए और ये नेशनल लेवल पे ये कंपनियां आगे आई, और इनको कुछ लक्ष्य दिए गए, और बिडिंग जो है इसमें हम लोगों ने कुछ जो नीतियां अपनाई है, जैसे कि स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन है, ये बनाया गया कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सभी से मिलके कि अगर हम स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन निकाल दें और पूरे देश में, चाहे वो राज्य सरकारें इसको अपनाना चाहती हैं, राज्य सरकार भी डायरेक्ट लगा रही है, और ये 4 एजेंसियां जो नेशनल है ये लगा रही है, और इस तरह देखिए पूरे राज्य में इसका विस्तार किया गया। और विस्तार करने के लिए ये है कि 2 तरह से लगती हैं, एक तो हमारे सोलर पार्क्स हैं, आपने सोलर पार्क स्कीम सुनी
जी जी
होगी, मैं बड़े
जी
पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ।
जी
भारत में ये सोचा गया कि हमें तो गीगावाट स्केल में पावर प्लांट लगाने हैं एक जगह,
जी
जबकि विदेशों में, अन्य विदेशों में इतने बड़े बड़े पावर प्लांट अभी नहीं आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि विश्व के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट हमारे देश में है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर रूफटॉप प्लांट हमारे देश में है, और वर्ल्ड के तीसरे स्थान पर हम हैं इस समय सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। तो ये उपलब्धियां जो है नीतियों के कारण आई हैं।
बहुत ही लाभप्रद सूचनाएं आपने दी हैं। श्रोताओं की ओर से हम
जी
आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक।